आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में मनाए गए गणतंत्र दिवस के जश्न की और साथ ही इस अवसर पर होने वाली घटनाओं की। 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सिविल और सैनिक अधिकारियों ने भाग लिया। जश्न में भारत की सेनाओं की ताकत का नज़ारा देखा गया। भारत अपने गणतंत्र दिवस जश्न में किसी विशेष अतिथि को निमंत्रित करता आया है। विशेष अतिथि के रूप में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है। इस साल भारत ने एक नई पहल करते हुए एक से अधिक विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया। इस साल आसियान के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस जश्न के मेहमान थे। ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बुल्किया खुद विमान उड़ाकर भारत पहुंचे और उन्होंने सुर्खियां बटोरी। एक विवाद सीटों के मुद्दे पर हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को छठी लाइन की सीट दी गई, जिस पर कांग्रेस ने अप्रसन्नता जताई, क्योंकि ये परंपरा रही है कि विपक्षी नेता को आगे की लाइन में बिठाया जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला:
भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने गणतंत्र दिवस जैसे पर्व पर भी अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं छोड़ी। गणतंत्र दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है और हम सबको उस पर फक्र है। उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष को छठी पंक्ति में जान बूझ कर अहंकारी शासकों द्वारा स्थान देना अपने आप में सबको आश्चर्यचकित भी करता है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेतृत्व की मनोदशा को भी बताता है।
मगर सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि कांग्रेस की नाराजगी अकारण है।
राहुल गांधी जी को लोकतंत्र का पर्व था, हम कहीं बैठ करके लोकतंत्र का पर्व बना सकते हैं? आपको सम्मान पूर्वक वीवीआईपी रो में बैठाया गया है, जहां महत्वपूर्ण लोग बैठे थे। इवन की मंत्रीगण, हम लोग कई मंत्रीगण 8वां रो में बैठे थे, 10वां रो में बैठे थे।
गणतंत्र दिवस पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दो पक्षों के बीच होने वाली गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां दंगा हुआ वहां दोनों ही पक्षों के पास तिरंगा था और झगड़ा रास्ते को लेकर हुआ। अखबार के अनुसार बट्टू नगर के स्थानीय मुसलमानों ने गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने की तैयारियां की थीं और कुर्सियां बिछाई थीं। वहीं बाइकों पर निकल रही तिरंगा रैली में शामिल युवाओं ने कुर्सियां हटाकर रैली वहीं से निकालने के लिए कहा था। एक स्थानीय नागरिक ने अखबार को बताया कि बाइक सवार नारेबाजी कर रहे थे और लोगों ने उनसे गणतंत्र दिवस का जश्न खत्म होने का इंतजार करने का आग्रह किया, लेकिन वो वहाँ से पीछे नहीं हटे। IGP ध्रुव कांत ठाकुर ने अखबार को बताया, जहां घटना हुई वहां मुस्लिम समुदाय के लोग तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे थे। तनाव फैल जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद आगजनी की घटनाएं होती रहीं। भाजपा के नेताओं ने कासगंज पहुंचकर भड़काऊ भाषण दिए। एटा से भाजपा के सांसद राजबीर सिंह:
सुन्दु, सुन्दु। सुन लीजिए, मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया।
भाजपा नेता साध्वी प्राची इस प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा आगे आगे रहती हैं। उन्होंने भी कासगंज पहुंचने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें अलीगढ़ में रोक लिया। साध्वी ने भी भड़काऊ बातें की।
जिस तरह से उनका कत्लेआम किया गया, भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए वो जा रहे थे, जश्न मना रहे थे गणतंत्र दिवस का।
देखिए, वंदे मातरम का जो विरोध करते हैं, मैं समझती हूँ उनसे बस्तियां खाली करा देनी चाहिए और उन्हें सीधा सीधा पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि हिंदुस्तान में रहेंगे तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपनी टिप्पणी में कहा कि देश का माहौल खराब करने की योजनाबद्ध कोशिश की जा रही है।
दरअसल ये सब प्लैंड हिंसा है मुल्क का माहौल खराब करने वाले लोगों के बारे में। खुद लोग ही तय करें, क्योंकि अब अदालतों की तो बस की बात नहीं, अदालतों के फैसले तो माने नहीं जा रहे। अब तो जो मोदी जी कहें वो सही, जो योगी जी कहें वो सही।
उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अधिकारियों का कहना था कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किसी भी असामाजिक तत्व को, चाहे वो कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, कानून व्यवस्था किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जो भी असामाजिक तत्व मिला और उसने कोई कार्रवाई अराजकता की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
भारत के वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा घटना के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है तो अब हालात खराब किए जा रहे हैं।
मगर साजिश ये है, पहली बात, आप तक झूठ पहुंचाया जा रहा है। झूठ आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है कि मुसलमानों ने आपत्ति दर्ज की तिरंगे पे। नहीं, तिरंगे पे आपत्ति नहीं थी, मुसलमान भी तिरंगा फहरा रहा था। आपको झूठ ये पहुंचाया जा रहा है कि बेचारे एबीवीपी और वीएचपी के लोग गए, उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की और गोली मार दी गई। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, चंदन मेरे भाई की मौत की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं और चाहे जो भी टकराव हो, आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप हाथ कानून में लें। मगर उस वक्त गोलीबारी दोनों पक्षों से हो रही थी। क्या कासगंज को दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की तैयारी है? कोई 3.5-4 साल में अच्छे दिन तो आए नहीं। नौकरियों को लेकर कोई जवाब नहीं है। विदेशी स्तर पर भारत तमाम जगहों से घिरता जा रहा है। डोकलाम को लेकर आपने बड़े बड़े वादे किए थे, डोकलाम में फिर चीन आके बैठ गया, फिर से सड़क का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पाकिस्तान के साथ तनाव, नेपाल आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नौकरियां, 2 करोड़ का वादा था वो नहीं थी, अब हो क्या रहा है उसके नाम पे? हो क्या रहा है उसके नाम पे? हो रहा है कि राजस्थान में हालात को बद से बदतर किया जाए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात की जाए। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि ये किसका हित है इसमें कि आप शांति से अपना जीवन नहीं बिता पाए, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित ना रहें, ये किसका हित है?
भारत का गणतंत्र दिवस तो मनाया गया लेकिन कासगंज के तनाव और राहुल गांधी की सीट जैसे विवाद के कारण थोड़ी किरकिरी भी हुई, जिससे बचा जा सकता था।